हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 9। गुरु अगौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं ताकि जो आध्यात्मिक ज्ञान हम पढ़ने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिके। ॐ नमो भगवति वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो वयादितरकश चार्थि श्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितकर्तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवति महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिध्यवरुध्यति च कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भाविकाः। यहाँ तक मंगलाचरण के बाद वेदव्यास जी ने कथा का प्रारंभ किया। नैमिषारण्य तीर्थ में शुनिक आदि ऋषिगण स्वर्ग लोक में जिन भगवान की कीर्ति गाई जाती उनको प्रसन्न करने के लिए एकत्रित हुए 1000 साल तक यज्ञ करने की इच्छा से। तो वहां पर एक दिन श्री सूत गोस्वामी पधारे और उन्होंने यज्ञ को बंद करके उनसे प्रश्न करना प्रारंभ किया। और प्रश्न प्रारंभ करने से पहले 3 श्लोकों में उनकी गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने पहले कहा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्म शास्त्राणि अन्युत। सबसे पहली बात कि आप निरपराध हो, निष्कपट हो, आपके अंदर कोई अपराध नहीं है, आप अनग हो। अनग कहते हैं जिसके अंदर कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो और एकदम निष्कपट हो। तो बोला आप इतने, और इसके साथ साथ आपने समस्त इतिहास, समस्त पुराण, सब कुछ जितने धर्म शास्त्र हैं उनको ना केवल पढ़ा है बल्कि बहुत बार उसकी व्याख्या की है, और इसको ये क्योंकि हृदय गम्य हो गए हैं, आपको सब कुछ याद हो गया है, इसलिए यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण। जो भगवान बादरायण है वो जो सब कुछ जानते हैं, उनके पास जितना का जितना ज्ञान है वो, और अन्य च मुनयः, और जितने दूसरे भी मुनिगण हैं जो जो अपने अपने जितने भी शास्त्रों में निपुण हैं, जिन्होंने अलग अलग व्याख्याएं की हैं, अलग अलग दर्शन लिखे हैं, वो परावर विदो विदु। इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी, शायद मैंने पहले पर का मतलब, परा का मतलब सगुण बताया था, लेकिन परा का मतलब है निर्गुण और अवर का मतलब होता है सगुण। यानी ऐसे सारे मुनिगण जो कि भगवान के निर्गुण और सगुण रूप को जानते हैं, उनके ऊपर जिन्होंने दर्शन लिखा, और वास्तव में भगवान तीनों गुणों से परे हैं। वो भगवान निर्गुण हैं, लेकिन तब जब वो अपने दिव्य धाम में रहते हैं, दिव्य धाम में जब वो अपने निज परिकर जनों से, जो कि नित्य सिद्ध परिकर गण है, उनके साथ जब वो लीला करते हैं तो भगवान निर्गुण है, यानी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। लेकिन जब वो प्रकृति को स्वीकार करते हैं, जीवों का पालन करते हैं, रचना करते हैं, संहार करते हैं, और उनके लिए भगवान जब अलग अलग अपनी शक्तियों को ये सब कार्य प्रोवाइड करते हैं, जैसे पालन करने के लिए विष्णु भगवान और रचना करने के लिए ब्रह्मा जी और संहार करने के लिए शिव जी के रूप में खुद ही भगवान के ही ये सारे अंश हैं। तो ये सब जैसे पालन करने के लिए भगवान को सत्वगुण जो है वो अपनाना पड़ता है, और रचना करने के लिए रजोगुण, तो संहार करने के लिए तमोगुण, ये सब भगवान गुणों को स्वीकार करते हैं। जब वो प्रकृति करते हैं तो इन सब गुणों को स्वीकार करते हैं, तब इस तरह से भगवान को सगुण कहा जाता है। यानी कि जब भगवान निर्गुण भी हैं, यानी समस्त गुणों से परे, लेकिन सगुण भी हैं, जब वो प्रकृति को की रचना करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार है या साकार, इसमें नहीं, निर्गुण और सगुण गुणों के लिए कहा गया है। और यहाँ पर समस्त ऋषिगण वेद सुत गोस्वामी को बोलते हैं कि आप निर्गुण और सगुण सब कुछ जानते हो, क्योंकि जो वेद व्यास जी ने पढ़ा है, अन्य ऋषियों ने सब कुछ आपको सिखाया है। क्यों? वेद तत्वम सौम्य तत्सर्वम, क्योंकि आप बहुत सौम्य हो, आप बहुत शीतल हो चंद्रमा की तरह, तो तत्व तद अनुग्रह, और आपकी इस विनम्रता को देखते हुए, आपकी इस गुरु भक्ति को देखते हुए, उन सब ने आपके ऊपर अनुग्रह किया, और क्योंकि आप बहुत ही स्निग्धस्य शिष्य हो, यानी ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य, इतने प्रेमी हो, स्निग्ध स्नेही से निकला, बहुत श्रद्धा है आपके अंदर, और बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से आपको सबने पढ़ा है, क्योंकि आपकी विनम्रता को देखकर, आपकी श्रद्धा को देखकर जब वो सब प्रसन्न हो गए, गुरवो गुह्यम अप्युत, और जब गुरु के ऊपर शिष्य के ऊपर जब गुरु प्रसन्न हो जाता है, तो वो चीजें जो बहुत ज्यादा गुही होती हैं, वो भी उनको सिखाता है, वो भी उनको बताता है, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए हैं आपके गुरु, आपके विनम्रता को देखकर, आपकी श्रद्धा को देखकर, तो सब कुछ आपको बता दिया है। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप हमें वो सब कुछ बताइए। और यहाँ पर इतना निवेदन करने के बाद आज नवे श्लोक में वो प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं। वास्तव में भक्तों, ये जो प्रश्न है ना, जो ये पूछ रहे हैं ऋषिगण, वो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। आज से प्रश्न पूछना आरंभ किए हैं, और इस पूरे जितना ये चैप्टर है ना, पहला अध्याय, उसमें सब सिर्फ ऋषिगण प्रश्न ही पूछेंगे, और ये 6 प्रश्न जो है, इनके उत्तर में सूत गोस्वामी जो है वो उन्हें भागवतम बताएंगे। कोई किसी प्रश्न का उत्तर एक ही श्लोक में आएगा, किसी का कुछ अध्याय में आएगा, किसी के पीछे तो कई कई स्कंद निकल जाएंगे, और इसके बीच में भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, जैसे परीक्षित महाराज पूछेंगे, विदुर से मैत्रेय ऋषि, इस तरह बीच में भी आएंगे। लेकिन बेसिक जो है श्रीमद् भागवतम की बुनियाद जो है वो इन 6 प्रश्नों पर रखी गई है। तो आप सबसे निवेदन है कि इन 6 प्रश्नों को आपको हृदय गम्य करना है, इनको आपको लर्न करना है, याद करना है, ताकि हम जब 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 उत्तर आएगा तो हम इस प्रश्न के साथ उसको रिलेटेड करेंगे। ये प्रश्न का उत्तर यदि समझ में आ जाएगा तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में रियल जो प्रश्न होते हैं वो इन्होंने किए हैं पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए इन्होंने प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ऋषियों का पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का एवं समझने का प्रयास कीजिए। त्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संशितुमर्हसि। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संशितुमर्हसि। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि। 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 शब्दों का अर्थ देखिए। तत्र 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 मतलब अब आपने जितने भी शास्त्र पढ़े हैं, जितने ही इतिहास पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, जितने भी शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है और जितने जितने शास्त्रों की व्याख्या की है, प्लस जितने जितनी चीजें आपको वेद व्यास जी ने बताई हैं और दूसरे सारे मुनियों ने आप पर अनुग्रह करके जो जो रहस्य बताए हैं उन सब के विषय में बोलने, वो सब कुछ आपने जो कुछ आज तक सीखा है। तत्र तत्रांजसायुष्मन्, अंजसा का मतलब होता है आसान, जो ऐसा ज्ञान जो कि आसानी से समझ में आ जाए। ऐसी बात बताओ, अब आपने तो बहुत कुछ सीखा है। और आयुष्मान, अभी देखो इसके बाद बोला आयुष्मान, आयुष्मान का मतलब जानते हो? जैसे हम बोलते हैं ना आयुष्मान भव, यानी चिरंजीवी, यानी कि बहुत समय तक आपने शास्त्र अध्ययन किया और बहुत बहुत समय तक गुरुओं की सेवा की, भक्ति की, और इस बहुत सारे समय में आपने बहुत कुछ सीखा है। आपको अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि प्रवचन करने वाला जो वक्ता होना चाहिए ना, वो एकदम उसके अंदर दो गुण होने चाहिए। एक तो उसके अंदर भगवत प्रेम होना चाहिए, वो भगवत भक्ति उसके अंदर होनी चाहिए और गुरुओं की और भगवान की भक्ति में भी एकदम पारंगत होना चाहिए। और दूसरा, उसके अंदर शास्त्रों का कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों के विषय में उसको कंप्लीट पता होना चाहिए। वो गुरु के अंदर ये दो गुण तो एटलीस्ट होने चाहिए कि वो भगवान का भक्त होना चाहिए और शास्त्रों के तत्व को, शास्त्रों के मर्म को जानता हो। तो यहाँ पर लेकिन ना ये जरूरी नहीं है कि प्रवचन में के वक्ता बहुत अच्छा बोलने वाला हो, यानी वर्ड जगलरी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग तरीकों से मनोरंजन आपको करके दिखा रहा हो। तो लोग आजकल लोग ऐसी कथाएं बहुत पसंद करते हैं जिसमें मनोरंजन हो, बहुत सारे सांसारिक उदाहरण दिए गए हो, या फिर ना फिल्मों की स्टोरीज या सॉन्ग्स बीच में आ रहे हो, या फिर स्टोरीज बीच बीच में कथाएं आपको सुनाते हैं। तो इस तरह के प्रवचन जो है वो बहुत हिट जाते हैं आजकल, बहुत सारी पूरी सभाएं भरी हुई होती हैं ऐसे। लेकिन जो शास्त्र के, अभी ये शास्त्र में खोल के बैठ जाऊं और एक एक शब्द को ऐसे पढ़ाऊं, तो मैं जब ऐसे श्रोताओं को देखूंगी ना, तो आधे से ज्यादा श्रोता जो है, बल्कि 99% लोग तो सो रहे होंगे, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। आज तक इतना देसी घी कभी ग्रहण ही नहीं किया है, कभी ऐसा सुना ही नहीं है कि शास्त्र को किस तरह से पढ़ा जाता है, शब्दों को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरह से एक एक शब्द को, एक एक शास्त्र के वचन को, एक एक श्लोक को किस तरह से समझा जाता है। तो ये ग्राह्य हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या है, प्रवचन में ये कोई जरूरी नहीं कि वक्ता बहुत अच्छे बोलने वाला हो, बोलने की कला हो उसके अंदर हो, नहीं, ये सब आध्यात्मिक में नहीं चलता। जरूरी क्या है कि वो शास्त्र की बातों को, वो वेद व्यास जी की बातों को कितना एज इट इज बता सकता है, कितना एज इट इज प्रस्तुत कर सकता है। भाषा चाहे कैसी भी हो, स्वर चाहे सुंदर हो या ना हो, लेकिन अगर आपको एज इट इज सुनने को मिल रहा है, एकदम शुद्ध भक्त होना चाहिए और आपको एज इट इज बताए, भले उसको पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो आपको बता रहा है उसके विषय में उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। ऐसा नहीं उधर से गोल घुमा रहा है, उधर से गोल घुमा रहा है, श्लोक पढ़ रहा ही नहीं है, श्लोक के वचन को कुछ बता रहा ही नहीं, अपनी तरफ से बहुत सारी स्टोरीज आपको बता रही, हाँ भाई ये वाला श्लोक पढ़ा, श्लोक का मतलब क्या था कुछ पता नहीं, श्लोक के वर्ड्स क्या थे कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अगर उसकी भाषा इतनी सुंदर ना हो, उसको बोलने का इतने सारी मतलब कला इतनी इसके अंदर ना हो, किस तरह से बात करे, ऐसे हकला के मेरी तरह बोलता हो, लेकिन अगर आपको एकदम इज इट इज बता रहे तो वो ग्राह्य है। लेकिन अगर स्वर बहुत सुंदर हो लेकिन कचरा बोले तो ग्राह्य है क्या? जैसे अक्सर महात्मा गण ऐसे उदाहरण देते हैं कि सोने के बर्तन में यदि अमृत हो तो बहुत ही सुंदर है कि सोने के बर्तन में आपको अमृत दिया जा रहा है, तो पीने में भी टेस्टी है और देखने में भी टेस्टी, परंतु अमृत तो अमृत है ना, यदि अमृत मट्टी के बर्तन में भी परोसा जाएगा तो उतना ही स्वादिष्ट होगा, है ना, उसका जो रिजल्ट है वो तो इतना ही है, आपको अमर बनाएगा। परंतु यदि सोने की प्लेट में या सोने के बर्तन में पशुमल गंदगी यदि परोस दी जाए तो उसका क्या करेंगे, क्या वो ग्राह्य है? कदापि नहीं। तो यदि वो बोलने वाला कितना ही सुंदर बोल रहा है, कितना ही उसके अंदर बोलने की कला है, वर्ड जगलरी उसको बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसको थोड़ी खाना है आपको, वो जो बोलेगा उसको ग्रहण करना है। तो वो यदि वो कचरा बोल रहा है, वो यदि शास्त्र आपको नहीं बता रहा है, तो वो कदापि ग्राह्य नहीं है। हम देखते हैं कुछ लोगों के अंदर वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होता है, उसका बोलने का तरीका इतना स्वीट होता है कि वाकई में दिल करता है बोल, ये जो बोल रहा है उसको सुना जाए। लेकिन ना ऐसा नहीं, अगर वो आपको शास्त्र नहीं सुना रहा है, यदि आपको एज इट इज नहीं सुना रहा है, तो उसका उससे आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे जो वक्ता हैं सूत गोस्वामी जी, उनके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, उनका स्वर बहुत अच्छा है, उनकी भाषा तो एकदम परफेक्ट है, जो कुछ, क्योंकि ये सब उन्होंने कहाँ से सीखा, सारे गुरुजनों ने उनके ऊपर इतनी कृपा की, उनकी विनम्रता को, उनकी श्रद्धा को, उनके प्रेम को देखकर, ये सारे आशीर्वाद जब गुरुओं की इतनी सारी कृपा से उनको शास्त्र का मर्म पता है, उनको सारे शास्त्रों के जो रहस्य है ना वो सब पता है, तो ऐसे गुरु के पास गए हैं वो, जो सब कुछ जानते हैं, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, और उनको क्या कह रहे हैं, तत्र तत्र जसा आयुष्मान, आप आयुष्मान हो, आपने अपनी बहुत बड़ी आयु में ये सब कुछ बहुत मुश्किल से ग्रहण किया, क्योंकि शास्त्र को पढ़ना, उसको अध्ययन करना, उसको बताना, उसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, और आपने तो बहुत मुश्किल से किया है, बड़ी आयु में किया, लेकिन हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, अंजसा चाहिए। अंजसा का क्या मतलब है, जो बहुत ईजी हो, जिसको करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अभी हम लोग को मुश्किल भक्ति नहीं अच्छी लगती, हम लोग को भी नहीं अच्छी लगती ना, मुश्किल मुश्किल तपस्याएं, मुश्किल मुश्किल यज्ञ, ये सब मुश्किल मुश्किल कार्य करना अच्छा नहीं लगता ना। तो हमारे लिए पूछा है, हमारे जैसे लोग के लिए पूछा है, अंजसा बताओ, यानी इजी हो, जिसको करने में मुश्किल ना हो। और दूसरा अंजसा का मतलब ये भी निकालते हैं कि जो आसानी से समझ में आना हो और उसको करने के बाद बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं हो, यानी एक बस एक एक बता दो कि कोई ऐसा साधन बताओ जिससे जीवन का लक्ष्य, जिससे जीवन की सिद्धि जो है बहुत आसानी से ही प्राप्त हो जाए हमें जीवन का लक्ष्य। और दूसरा ये कि अव्यभिचारिणी साधन बताओ, ऐसा हो जिसको यदि करें और उसको कंप्लीट भी हम अपनी जिंदगी में ना कर सके। यानी व्यभिचारी का क्या मतलब होता है, साधन ऐसा जो इनकम्प्लीट रह जाए, छूट जाए, आधा रह जाए, या फिर उसको हम लोग कर नहीं सके, जिसमें एक्सीडेंट का खतरा हो, यानी कि दूसरे ऐसे साधन है ना, जैसे अगर उसमें त्रुटि रह जाएगी या खामी रह जाएगी तो क्या हो जाएगा कि वो कंप्लीट नहीं होगा, तो उसका रिजल्ट कंप्लीट नहीं आएगा। लेकिन हमको कोई आसान ऐसा बताओ जो अगर इनकम्प्लीट भी हो, जिसके अंदर त्रुटि भी रह जाए, यदि वो साधन हम परफेक्टली ना भी कर सके तो भी श्रेय प्रदान करने वाला हो, तो भी हमारे जीवन का लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाने वाला हो। अंजसायुष्मान, और ऐसा हो भावता यद्विनिश्चितम। भावता का मतलब होता है आपके जरिए, जो आपने बताया, यानी कि आपके हिसाब से। अब आपने तो सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारे गुरुओं ने जो भी सिखाना था वो सब आपको सिखा दिया, आपको सब कुछ खबर है ना। अब आपने सब कुछ जान लिया तो आपने क्या निश्चित किया, भावता यद्वि निश्चितम, आपने जो निश्चित किया ना, आप जो बोलेंगे वही हमारे लिए कल्याणकारी है, वही हम सब एक कनिष्ठ होकर, एक हम सब आपको परफेक्ट समझते हैं, क्योंकि आपके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, क्योंकि आपको आपके गुरुजनों ने सब कुछ सिखा दिया है, सारे इतिहास, सारे शास्त्र, सारे धर्म शास्त्र, सारे वेद, आप सबको पता, आपको वेद व्यास जी का सारा ज्ञान पता है, दूसरे ऋषियों का भी सारा ज्ञान पता है। तो जो कुछ आपने आज तक सीखा ना, वो उसमें से आपने क्या निश्चित किया है, उसमें से आपने आपके ख्याल में सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा असर वाला, सबसे ज्यादा परफेक्ट साधन क्या है। पुंसाम एकांततः श्रेय, पुंसाम का मतलब होता है जन सामान्य के लिए, यानी आम जो लोग हैं। अब देखो, हर कोई तो आपकी तरह तपस्या नहीं कर सकता, हर कोई की इतनी उम्र नहीं होती, हर कोई के ऊपर सारे गुरुजन जो है वो कृपालु नहीं होते हैं। तो आम जो हमारे जैसे सीधे सारे लोग हैं, उनके लिए एकांततः मतलब एकदम एक ही हो, बस उस अव्यभिचारिणी साधन, यानी इसका ही मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई एक्सीडेंट का खतरा ना हो, जिसके अंदर त्रुटि रह जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो फिर भी श्रेय प्रदान करने वाला हो। श्रेय का मतलब होता है एकदम भलाई, परम कल्याण जिससे आपका होने वाला हो, जिससे हमारा परम कल्याण हो जाए, और जिससे आम लोग का साधारण, पुंसाम का मतलब होता है साधारण लोग, बेचारे समझते नहीं शास्त्रों को, इतना ज्यादा वो ये सब कर नहीं सकते, जैसे हम लोग कहाँ शास्त्रों को, इतने सारे वेद हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना ही कठिन है, एक भगवद गीता ही कम्प्लीट नहीं होती, आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर जाती है, और इतने सारे शास्त्रों के अंदर जो निचोड़ है, पढ़ना अलग बात है, और उसमें से जो परफेक्ट है वो निकाल के देना, वो तो एकदम इम्पॉसिबल है हमारे जैसे लोग के लिए। तो आपने क्योंकि सबको समझ लिया, तो आप बताओ उसमें से सबसे ज्यादा जन साधारण के लिए श्रेय क्या है, एकांतता श्रेय बताओ। तन का मतलब होता है उसको, न मतलब हमको, शाहुसुति मतलब समझाने के लिए अर्हसि, योग्य हो, क्योंकि आप योग्य हो, क्योंकि आप सब शास्त्रों को जानते हो, सब कुछ आपको पता चल गया है, तो यहाँ पर आपके अतिरिक्त और कोई दिखता नहीं हमें जो हमें बता सके। इतने सारे शास्त्र तो हम पढ़ नहीं सकते, इतने सारे गुरुओं की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते, और ना ये सब नए होने की वजह से हम लोगों को सही चीज समझ में नहीं आएगी ना। इसलिए आप हमें बता दो कि आज तक आपने जो कुछ पढ़ा है, आज तक आपने जो कुछ सीखा है, उसमें से कौन सा ऐसा एकांत साधन निश्चित किया है जिससे जीवन का लक्ष्य यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसको मोक्ष मिले, कृष्ण प्रेम मिले, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है ना, वो समझ में आ गया ना। अब क्या आपको ये क्वेश्चन याद करना है, अपने वर्ड्स में मुझे ये बताना कि क्या क्वेश्चन, हर किसी को आज ऑडियो में बताना है। श्लोक भी मैंने बहुत दफा रिपीट किया है, जो श्लोक मैं चाहती हूँ सब लोग श्लोक भी पढ़ें और ट्रांसलेशन भी मुझे बताइए आप लोग, ठीक है उसकी। अब मैं आपको ट्रांसलेशन एज इट इज पढ़ के बता रही हूँ, ये अगर मुश्किल लगती है तो अपने वर्ड्स में भी आप बता रहे हो। अनुवाद है, अतएव दीर्घ आयु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझने में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। फिर से, अतएव दीर्घ आयु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन सामान्य के कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। अब इसी को हम अगर अपने शब्दों में बताएंगे ना, तो इसका मतलब है ही लंबी उम्र यानी दीर्घ आयु, ठीक है, लंबी उम्र प्राप्त करने वाले सुत गोस्वामी, आपने आज तक जो सीखा है उसमें से एकदम आसानी से समझने वाला साधन हमें बताइए जिससे साधारण लोगों का परम कल्याण निश्चित रूप से हो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हे दीर्घायु वाले, ऐसा आपने अब तक जो सीखा है उसमें कौन सा ऐसा एकांतक साधन निश्चित किया है जिससे मनुष्य को जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो। यानी कि साधन बताओ, साधन का मतलब होता है प्रोसेस, बताओ मुझे वो प्रोसेस जो आसान हो, आसान भी हो और करने में भी आसान हो, समझने में भी आसान हो, और वो करने के बाद कोई त्रुटि रह भी जाए तो भी परफेक्ट उसका रिजल्ट आए। आपने क्या निश्चित किया है, आपको जो समझ में आया वो आसानी से समझने वाला हमें बता दो। हमारे पास ना इतना समय है, ना बुद्धि है, और ना ही इतना मुश्किल मुश्किल कार्य हमको करने में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन हम सिद्धि चाहते हैं, लेकिन हार्ड वर्क नहीं कर सकते सिद्धि के लिए, तो आसानी वाला कोई बता दो हमें, कोई साधन बताओ जिससे हमारा कल्याण हो। मतलब मुनिगण कह रहे हैं, ए लंबी आयु का आशीर्वाद पहनने पाने वाले, कृपा करके आप हमें आसानी से समझ में आने वाले तरीके से समझाइए कि आपने आम लोगों की भलाई के लिए क्या फैसला किया है। एक बार फिर अनुवाद, अतएव दीर्घ आयु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवद गीता में आचार्य की पूजा का आदेश है, क्या तद्विधि प्रणिपातेन। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर सामान्य जनता के कल्याण, विशेषतया उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो गोस्वामी होते हैं ना, वो सदैव सोचते हैं कि जो जन साधारण है, जो कि सदैव अपने घर गृहस्थी में इतना उनके पास समय नहीं होता है कि वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उनके लिए इतना मुश्किल है क्योंकि, लेकिन वो भी मनुष्य हैं, तो उनको भी तो भगवान का ना भगवान परम कल्याण की प्राप्ति की अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उनको भी मनुष्य योनि मिली है, तो किस तरह से उनका कल्याण हो, किस तरह से वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। जो ये सोचता है, जो इसके विषय में चिंतन करता है कि किस तरह से साधारण लोगों को आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त हो उसको कहते हैं गोस्वामी। जो आम लोग जो नहीं कर सकते हैं भक्ति, जो शास्त्र को नहीं पढ़ सकते हैं, उनको किसी तरह से उनकी मति जो कि भौतिक विचारों में, भौतिक मलिनता में, गंदगी में गिरी हुई होती है, उसको किसी तरह से निकाल के भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाने के लिए जो स्ट्रगल करते हैं, जो इसके लिए कार्य करते हैं, उनको आचार्य या गोस्वामी कहा जाता है। और आगे कहा, आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। ये लोग समझते नहीं है ना, वो लोग सोचते कि नहीं हमें अभी, कोई बोलेगा भाई हमें इनके लिए भौतिक कल्याण करना है, क्या करना है इनको, है ना, अच्छी स्कूल प्रोवाइड करनी है, अच्छा है ना मेडिकल प्रोवाइड करना है। लेकिन यदि आध्यात्मिक कल्याण हो जाएगा तो भगवान कहते हैं शुचिनाम श्रीमताम ये है योगो भ्रष्टो विजायते। अगर भक्ति में कल्याण हो जाए ना, अब इस जन्म में जो आपको मिला है वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार है, तो जितना आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा। लेकिन आज यदि आपको किसी ने भक्ति करना सिखा दिया ना, भगवान से प्रेम करना सिखा दिया ना, यदि आपको किसी ने आध्यात्मिकता में उन्नति करना सिखा दिया, तो पता इससे क्या होगा, इससे आपके जन्म जन्मांतर का कल्याण हो जाएगा। अगर कंप्लीट हो गया तो कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, फिर तो दुख की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगत। एक बार मुझे प्राप्त करने के बाद दुखों वाली इस दुनिया में तो आपको आना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि भक्ति करने के बाद आप भगवान को प्राप्त ना कर सके, यदि आपकी भक्ति कंप्लीट नहीं हुई, तो क्या होगा, श्रीमान शुचिमतां गेहे योगो भ्रष्टो भी जाए। तो यदि आप भ्रष्ट हो जाओगे, पतन भी हो जाएगा ना आपका भक्ति के अंदर, तो भी भौतिक दुखों का नाश हो जाएगा। फिर आपको अमीर घर में या फिर अच्छे परिवार में, आपको संपन्न धन धान्य वाले परिवार में प्राप्त उत्पन्न होना होने का अवसर प्राप्त होगा, जहाँ पर ये भौतिक दुख नहीं होंगे। तो जो भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, वो परम कल्याण चाहते हैं कि एटलीस्ट आपको अपनी ऐसी ऐसा आप करो जिससे आपको ये कल्याण पहले से ही, वो आपको कितना खिलाएगा, कितना बढ़ाएगा, कितना करेगा पहले से, यदि आपकी लाइफ में ये सब लिखा देगा, ये यदि वो भक्ति करना सिखा देगा ना, तो समझो आगे की आपके पूरे जन्मों को सिक्योर कर दिया उसने। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्य गण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। तो जब भी मिलते हैं, बोलते हैं आपको भगवान का एक माला आपको करनी शुरू कर देनी चाहिए, सुबह को भगवान को प्रणाम करना चाहिए, जप करना चाहिए। शास्त्र में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, खाली सुन लो बस, किस तरह से समय निकालो, भगवान के पवित्र नाम का जप करो, और है ना श्रीमद् भागवतम को, भगवद गीता को सुनो, ऐसे आपका कल्याण होगा। तो ऐसे आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह प्रलोह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें। इस कलयुग क्योंकि लोह प्रदान, यानी कि हर चीज कलयुग में है ना, सब एक दूसरे से झगड़ा कलह प्रिय है, हर कोई भाई भाई से झगड़ा करता है और अपने अपनों से झगड़ा करते हैं, लड़ाई में झगड़ालू दो है ये बहुत, हर कोई किसी से ईर्ष्या करता है, किसी के सुख को देखकर सब दुखी होते हैं। यहाँ कलयुग का सबसे बड़ा गुण क्या है, किसी ने अच्छा पहना है तो आपको ऐसा लगेगा उसने क्यों, वो इतना अच्छा लग क्यों रहा है, उसने इतना अच्छा क्यों, कोई अच्छा खा रहा है तो उससे प्रॉब्लम, किसी ने अच्छा घर ले लिया उससे प्रॉब्लम, किसी ने अच्छी गाड़ी ले ली, तो ये कलयुग का जो है ना ये लक्षण है, कलह प्रिय है, बस हर कोई एक दूसरे से चिढ़ता रहता है। को अगर अपनी लाइफ भी कोई जी रहा होगा ना, आप जैसे कोई सीधा साधा इंसान है, ऊपर आराम से बैठ के भगवान का भक्ति कर रहा है और है ना शास्त्र अध्ययन कर रहा है, तो उसके में भी आप दूसरे लोग है ना वो देखेंगे कि ये क्यों कर रहा है, दूसरा काम क्यों नहीं कर रहा है, खाली एक ही काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, उधर नहीं जा रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, और मतलब अपने रिश्तेदारों से नहीं कर रहा है वो, अरे छोड़ो ना उसको, जीने दो अपनी, ऐसा नहीं सोचेगा। यहाँ पर हर कोई दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ऐसा है, कोई किसी से ना खुश नहीं होता है, अपने लोग है ना वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ाई को पता नहीं होता, अपने लोग ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो इस कलयुग में कला प्रदान युग में की अक्षमता। अब दूसरी अक्षमता है कि लोग जो है ना आयु कम होती है, बुद्धि कम होती है, ये सब की वजह से इन सबको देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, कि जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने सीखा है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, अब इनका निचोड़ हमें बताइए, क्योंकि इस कलयुग में लोग सभी प्रकार से पतित हैं। अब बेचारे इतने पतित लोग हैं कि ना खुद पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं, तो आपने जो कुछ समझा है कृपा करके वो सही से बता दीजिए। मुनियों ने परम कल्याण की जिज्ञासा की जो समस्त लोगों का परम कल्याण है, यानी कि ऐसा कल्याण बताओ हमें जो सब लोगों के लिए जन सामान्य के कल्याण प्रदान करे, उनके जीवन का लक्ष्य उनको प्रदान करे, उनको मोक्ष प्रदान करे। वन एंड ओनली, एक ही काफी, ऐसा बताओ जो एक ही काफी। आपने क्या निश्चित किया है, ये यद्विनिश्चितम, आपने भवता यद्विनिश्चितम, आपने जो निश्चित किया है आप बताओ क्यों, क्योंकि श्यौंस तुम अरहसी, आप बताने के योग्य हो, आपने सब कुछ सीख लिया है, अब आप बता दो हमें, हम पर कृपा करो, हम साधारण जीव हैं, हम नहीं समझते हमारा कल्याण किससे होगा, ऐसा बताना आसान भी हो, समझने में भी आसान हो और करने में भी आसान हो, कोई मुश्किल वाला नहीं बताना, क्योंकि हमारे पास ना इतनी बुद्धि है और ना ही इतना बल है, ना ही हम अच्छे तरीके से मुश्किल चीजों को कर सकते, तो आसान वाला बता देना। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। अब इस संसार में जो कलयुग में है, कौन कौन से उसके अंदर पतित है, वो किस तरह से पतित है, उनके अंदर कौन कौन सी खामियां हैं, उनके अंदर कौन कौन से नुक्स हैं, जो कि जिसकी वजह से वो खुद से शास्त्र को नहीं समझ सकते, खुद से अपने कल्याण को नहीं ग्रहण कर सकते, वो आगे बताएं। क्योंकि यहाँ पर ये सूत गोस्वामी ऐसे कह सकते थे ना, चलो ठीक है मैंने तो शास्त्र पढ़ के है ना ये अपने लिए अपनी मर्जी से कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला होगा कि ये कल्याणकारी है, आप लोग भी, आप लोग के पास भी तो शास्त्र है, आप लोग ऋषि हो, आप लोग यहाँ पर बैठे हो, सारे शास्त्र पढ़ लो, फिर अपना अपना डिसीजन दो ना कि किस कौन क्या समझ रहा है, कि क्या श्रेष्ठ है, कौन क्या श्रेष्ठ है, अब मेरी बात को क्यों मान रहे हो, या फिर है ना अपनी तरफ से पढ़ के देख लो। तो उसके उत्तर में ऋषिगण जो बोलेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। ये पहला प्रश्न है, इसको आपको याद करना है, और मुझे आज सबकी ऑडियो चाहिए, चाहे हिंदी में पढ़ रहे हो चाहे ना संस्कृत में, मेरी इच्छा है कि संस्कृत में पढ़े, बहुत ही आसान और मधुर श्लोक है, आप विचार करके देखो कितनी कृपा है भगवान की आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर, कि हम गुरु महाराज की कृपा से, गौरंग महाप्रभु की कृपा से शास्त्र के श्लोक को पढ़ रहे हैं, शास्त्र के श्लोक के वर्ड्स को उच्चारण कर रहे हैं। आज तक जिंदगी में जितने भी साल के हैं हम, बोला ही बोला है, लेकिन आज जब हम भगवान के इस भागवत महापुराण के शब्दों का उच्चारण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में बोलना कहते किसे हैं। यही बोलना जो है वो कल्याणकारी, बोलते रहते हैं ना सुबह से लेकर रात तक, अपनी प्रशंसा, दूसरों की प्रशंसा, किसी की निंदा, किसी की क्या, लेकिन वास्तव में जो बोलना है वो शास्त्र है, वो भगवान के शब्द हैं, वो भागवतम के शब्द हैं। तो प्रयास कीजिए, आई एम ऑलवेज हियर टू सर्व। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।